मंगलमय मंगलकरण वीतराग विख्या नमोताहि जाति भई अर्हन्तादि मह जो इत्यादि सागर सुधी जो इत्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। दृष्टि की निर्मलता और भावों की निर्मलता, इन दो के द्वारा ही हमारा जीवन अच्छा बनता है, ऐसा आचार्य भगवंतों का कहना है। दृष्टि की निर्मलता आती है सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा से, उनके द्वारा कहे गए सात तत्वों के अभ्यास से और अपने आत्म कल्याण की भावना भाने से। परिणामों में निर्मलता आती है व्रतों का पालन करने से और अंतरंग में कषायों का अभाव होने से। यदि हम ये दृष्टि की निर्मलता और भावों की निर्मलता का अभ्यास करें तो ये भावना भी हमें तीर्थंकर जैसे विशिष्ट पद को प्राप्त करने में कारण बन सकती है। दर्शन विशुद्धि और विनय संपन्नता, ये दो भावनाएं हमने पिछले दिनों समझी हैं। निरतिचार शील और व्रतों का पालन करना, यह भी तीर्थंकर पद पाने में सहायक 16 कारण भावनाओं में से एक भावना है। तीन शब्द हैं शील, व्रत और निरतिचार। शील के मायने हैं सद्भाव, शील के मायने हैं ब्रह्मचर्य, शील के मायने हैं व्रतों की रक्षा करने में सहायक जो भी अनुष्ठान है वो सब शील है। व्रतों की रक्षा होती है कषाय के अभाव से, इसलिए कषायों का त्याग करना भी शील है। इस तरह आचार्य महाराज शील और व्रतों के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। व्रत तो सब जानते हैं कि पांच पापों से विरक्त होने का नाम ही व्रत है, लेकिन उन व्रतों के पालन करने के लिए श्रावक के लिए गुण व्रत और शिक्षा व्रत, ऐसे सात शील व्रत रखे गए हैं। और मुनि महाराज अपने पांच महाव्रतों का पालन करने के लिए पांच समिति और तीन गुप्ती ऐसे अष्ट प्रवचन मात्रिका रूप शील को धारण करते हैं। हम देखें कि पांच जो व्रत हैं वे अनुव्रत के रूप में हो चाहे महाव्रत के रूप में हो, उनके पालन करने से हमारा जीवन अच्छा तो बनता है, पर उनके पालन करने वाले को सबको तीर्थंकर प्रकृति बंध जावे ऐसा तो देखने में नहीं आता। तो फिर व्रतों का पालन करने वाले की ऐसी क्या विशेषता हो जिससे कि तीर्थंकर प्रकृति का संचय कर सके? तो कहते व्रत शील से समन्वित हो और उनका पालन निर्दोष रीति से हो। ये दो साथ में सावधानियां बता दी गई। व्रती व्यक्ति होवे, अपने व्रतों का पालन करता होवे और कषाय करे तो भैया शोभा नहीं देता। देता है क्या? इसीलिए व्रतों की रक्षा कषाय के अभाव में होती है, तो कषाय के अभाव का नाम ही शील है। व्रत तो शील से संपन्न हो तो ही शोभा देते हैं, अर्थात कषायों की मंदता में ही व्रत शोभा देते हैं। रावण ने मुनि महाराज के चरणों में व्रत ग्रहण किया था कि मैं जब तक कोई मुझे नहीं चाहेगा तब तक मैं उसे अपनी रानी बनाने के लिए चेष्टा नहीं करूंगा, स्वीकृति होने पर ही करूंगा, इतना ही मेरा व्रत है। लेकिन कभी भी रावण के इस व्रत की प्रशंसा नहीं होती। क्यों? चर्चा में बहुत आती है ये बात, लेकिन कभी भी रावण बहुत विद्वान था इस बात की कभी चर्चा नहीं होती। प्रशंसा व्रति भी है, ज्ञानवान भी है, लेकिन प्रशंसा नहीं हो रही, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। कारण क्या है? उसके भीतर जो मान कषाय की तीव्रता है, जो अहंकार है, वो उन व्रतों को निस्तेज कर देता है। कषायों की अगर मंदता होती तो व्रतों में निखार आता, लेकिन कषाय की तीव्रता हो जाने से उतने सारे व्रत भी उसके प्रभावक नहीं हुए। दीपायन मुनि महाराज छठे सातवें गुण स्थान में महाव्रतों के साथ विचरण कर रहे हैं, जिन्हें तेजस रिद्धि जैसी विशेष सामर्थ्य प्राप्त हो गई, लेकिन कोई भी उनके उस भाव लिंग और वीतरागता का वर्णन नहीं करता। जब भी चर्चा आती है तो कहते कि दीपायन मुनि के क्रोध के कारण और द्वारका जल गई। उदाहरण यही दिया जाता है, उनकी क्रोध कषाय ने उनके वे सारे महाव्रतों के और वीतरागता के जो पालन वो कर रहे थे उस सब को मलिन कर दिया। इसलिए व्रत का पालन तो सब कर सकते हैं, लेकिन शील सहित अर्थात कषायों की मंदता के साथ व्रतों का पालन करना, और इतना ही नहीं, व्रत का पालन करते समय प्राणी मात्र के कल्याण की भावना करना, तभी निर्दोष निरतिचार व्रत का पालन हो। अब विचार करें कि जो व्रत है वास्तव में वो है क्या चीज। आचार्य भगवंतों ने व्रतों के पालन करने को
दो तरह से व्याख्यायित किया है, एक तो प्रवृत्ति आत्मक और एक निवृत्ति आत्मक। सो जो अहिंसा इत्यादि का पालन हम करते हैं, जो अहिंसक प्रवृत्ति हम करते हैं, वह प्रवृत्ति आत्मक व्रत है, और वो जो हम हिंसा इत्यादि से बचने का पुरुषार्थ करते हैं, वह निवृत्ति मूलक व्रतों का पालन है। हिंसा न करना, अहिंसक जीवन जीना, ये दो एक ही सिक्के के पहलू हैं। विधि निषेधात्मक वर्णन है, जहां विधि है वहां प्रवृत्ति है, जहां निषेध है वो निवृत्ति है। लेकिन विधि निषेध पूर्वक ही हो, प्रवृत्ति निवृत्ति मूलक हो, जो भी हम शुभ प्रवृत्ति करें, क्योंकि व्रत प्रवृत्ति करना अर्थात शुभ प्रवृत्ति करना वो अध्यात्म मूलक होना चाहिए, तब वह निर्दोष प्रवृत्ति मानी जाएगी, तब वह निर्दोष व्रत माने जाएंगे। जो व्रतों का पालन करते हुए मात्र यह सोच करके कि शुभ क्रिया करने में ही धर्म है, इसमें ही मेरा कल्याण हो जाएगा, तो इतना ही पर्याप्त नहीं है। वह शुभ प्रवृत्ति मेरे अंतरंग में जो कर्म है, जो मुझे संसार में भटकाने वाले हैं, उनसे मुझे मुक्त करने में कारण है। ऐसे कर्मों की निर्जरा के भाव से, मात्र पुण्य के संचय के लिए करने से नहीं, कर्मों की निर्जरा के लिए मैं यह प्रवृत्ति कर रहा हूं, ऐसा विचार करके अगर करता है तो वही व्रतरूप प्रवृत्ति उसके लिए निरतिचार मानी जाएगी, निर्दोष प्रवृत्ति मानी जाएगी। क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, क्यों खाना, इतने विचार अकेले आहार ग्रहण करने के, क्या बोलना, कितना बोलना, कब बोलना, क्यों बोलना, कैसे बोलना, ये बोलने के लिए, क्या सोचना, कैसे सोचना, क्यों सोचना, कैसा सोचना, कब सोचना, ये मन के लिए, सब पर इतने प्रश्न लग करके जो प्रवृत्ति होगी वो प्रवृत्ति निर्दोष होगी। व्रती व्यक्ति व्रतों को तो ग्रहण कर लेता है चाहे जिसके पास जा करके, लेकिन उसके भीतर यह विचार आना चाहिए, अहिंसाणु व्रत का पालन करने वाला हो चाहे अहिंसा महाव्रत का पालन करने वाला हो, सबके साथ मन वचन काय की प्रवृत्ति तो जुड़ी हुई है। चाहे व्रती हो, संयमी हो, चाहे अव्रती असंयमी हो, मन वचन काय की क्रिया तो सभी को करनी पड़ती है सुबह से शाम तक। तो फिर दोनों में कुछ अंतर, क्या अंतर होना चाहिए, तो कि एक अंतर यही है कि जो संयमी है वो मन वाणी और शरीर से विचार करके ही प्रवृत्ति करता है। विचार क्या है, अपने आत्म विकास का विचार है, इसलिए वो प्रवृत्ति उसकी महत्वपूर्ण है। एक जैसी प्रवृत्ति करते दिखाई पड़ेगा, लेकिन भाव दशा दोनों में अलग अलग रहेगी। स्वपर कल्याण की भावना से प्रवृत्ति करेगा, जैसे उदाहरण के लिए क्या खाना, विचार करेंगे जो खाने योग्य वही खाएंगे, अवक्ष वस्तुओं का कैसे भक्षण करेंगे, और जो खाने योग्य हैं उनको भी कब खाना, चाहे जब पशुवत सुबह से उठे तो सबसे पहले यही काम कि ढूंढो रे कहां मिलेगा, और रात में भी अगर मिल जावे तो भी डाल लो, ऐसा तो नहीं करेगा, इतना ही अंतर है। खाने योग्य क्या है वो विचार करेगा, लेकिन खाने योग्य भी कब खाना ये विचार कर, कैसे खाना, चाहे जहां खड़े होकर के खाना, जूते चप्पल पहन के खाना, अशुद्ध हाथों से खाना, नहीं, शांति से बैठ करके अत्यंत निर्मल परिणामों से भगवान का स्मरण करके फिर खाना, ये भारतीय पद्धति है। इसी को संयमित प्रवृत्ति मानते हैं। ये तो हमारे लिए बचपन से घुट्टी में पिलाई जाती भारत में, ये विदेश नहीं है। हाँ, जिसको आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ये निर्दोष प्रवृत्ति है, आज इक्का दुक्का कोई दिखेगा निर्दोष प्रवृत्ति करते हुए, बाकी तो कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं, सब सब चलता है, रात है तो दिन है तो सब, मनुष्य भर को है कि सब चलता है। बाकी ने अपना अभी बहुत लोगों ने नहीं छोड़ा, पशु जगत में अभी भी उनके अपने खाने के नियम है कि दिन में ही खाएंगे तो रात में दाना चुगने नहीं उड़ते, कोई पक्षी दिखता नहीं है इसलिए नहीं उड़ते। अच्छा ठीक है, तर्क तो बहुत है अपने पास, बेईमानी करने के लिए बहुत तर्क है, लेकिन कभी किसी पक्षी को अगर आपको टेस्ट करना हो तो लाइट जला करके और सामने दाना रख दो और चुग लेगे तो मुझे आकर के बैठा हूं यहीं पर, बता देना मुझे, उसको तो दिख रहा है जी हैं दाने, आपने लाइट भी जला दी है, लेकिन उसे मालूम है कि अब समय खाने का नहीं है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि कब खाने का समय है कब नहीं है। हम चाहते तो ये हैं कि हमारा जीवन बहुत अच्छा और बहुत ऊंचा बने, लेकिन हमारी प्रवृत्ति हमने नहीं संभाली, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, जो आत्म नियंत्रण या आत्मानुशासन है, दूसरे पर अनुशासन करने की प्रवृत्ति तो बहुत विकसित हुई है इन दिनों, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसे रहना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं रहना चाहिए, ये प्रवृत्ति तो बहुत है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, ये बहुत अल्प है। थोड़े लोग होंगे जो ऐसा विचार करते, करना चाहिए, सबको करना चाहिए, मैं सुबह से शाम तक जो प्रवृत्ति करूं वह प्रवृत्ति सफल कल्याण के लिए है या नहीं है, मेरे आत्म कल्याण के में निमित्त है कि नहीं है, इतना भी विचार कर ले। व्रती व्यक्ति को, व्रत लेने वाले को तो यह विचार अवश्य ही करना चाहिए, जिसने व्रत नहीं लिए वह भी करे तो कोई हर्जा नहीं है, कोई हानि नहीं है, बल्कि लाभ ही होगा। तो कैसे खाना, कब खाना और क्यों खाना, कोई भी काम है तो क्यों करना, कारण क्या है उसके पीछे। ले तप बड़ा वन हेतु नहीं, तन पोषते तजी रसन को, ऐसा एक साधक के लिए लिखा, ठीक यही प्रवृत्ति करने वाले पर लागू होगी कि मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए ही भोजन करूं, सिर्फ खाने के लिए और जिह्वा की लोलुपता के लिए नहीं, या कि शरीर के बलिष्ठ बनाने के लिए नहीं है, यह तो सिर्फ आत्मा के निर्मलता के लिए मुझे करना है, भोजन भी आत्मा की निर्मलता के लिए, तब तो बड़ा मुश्किल वाला मामला है। तब भोजन की तो देखना पड़ेगी, चॉइस करनी पड़ेगी कि कौन सा वाला आत्मा को या कि मन को निर्मल बनाएगा। बाबा जी के पास में गया था एक युवक पूछने के लिए कि क्या क्राइटेरिया है मन को निर्मल बनाने का, तो उन्होंने कहा कि अपने भोजन पान वगैरह सबको निर्मल बनाओ, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से ही सत्व की अर्थात आत्मा की शुद्धि होती है, ऐसा वाक्य है भारतीय संस्कृति में। अब बताइए, उसके समझ में नहीं आया तो बाबा जी के लिए कोई रोटियां भी भेंट करके गया था और पूरी भी भेंट करके गया था, तो बाबा जी ने सामने लगा हुआ दर्पण मंगाया और कहा लाओ जरा उसको, उस पे रगड़ो, जब पूरी तो बहुत अच्छी है दर्पण पे रगड़ो, सो दर्पण पे जैसे ही पूरी रगड़ी सो पहले तो मुंह दिखाते ही है तो फिर वो सब रो धुंधलो होगा, पूरी तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन दर्पण पर रगड़ी तो वो दर्पण की जो निर्मलता थी वो खराब हो गई। फिर कही कि अच्छा अभी पे रोटी रगड़ो, रोटी रगड़ी सुबह तो फिर चकाचक बिल्कुल बढ़िया हो गया। कि डिसाइड हो गया कि कौन सी चीज मलिन करेगी, कौन सी चीज निर्मल करेगी। मेरे मन को, मेरे चेतना को मेरी आशक्ति मलिन करती है, पर आशक्ति तो पंचेंद्रिय और मन के विषयों में होती है। सो मैं उन विषयों में लोलुप होकर के सेवन नहीं करूंगा विषयों का। इतना विवेक अगर व्यक्ति के भीतर जागृत हो जावे तो विचार करके ही कि क्यों खा रहा हूं, चेतना की निर्मलता के लिए, और दूसरे का अकल्याण तो नहीं होता मेरे भोजन ग्रहण करने से। हाँ बताइए, मुनि महाराज आहार कर रहे हैं, 50 लोग दे रहे हैं, 100 लोग देख रहे हैं, अरे भोजन की प्रक्रिया में क्या देखने की बात है? कोई भी भोजन कर रहा सो करे, लेकिन बताओ इसको भी धर्म की प्रक्रिया बन ली, इसको भी सफर कल्याण की प्रक्रिया बना दिया आचार्यों ने। ये है प्रवृत्ति करने का ढंग, की प्रवृत्ति भी ऐसी जिससे कि दूसरे के परिणामों में भी निर्मलता आती कि देखो ये मार्ग है। इस तरह कितने निष्प्रय होकर के समता भाव से और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सबसे जो है ग्रहण कर रहे हैं, कोई मन में विषाद नहीं है, जो दिया जा रहा है उसे ले रहे हैं, मीन मेष नहीं है, शुद्ध भोजन करते हैं। ये देख करके मैं भी ऐसा ही पानी पात्रो दिगंबरा, मैं ऐसे ही पानी पात्र में और भोजन करूं दिगंबर अवस्था में, यही मार्ग जो है वो मेरे लिए कल्याण का है, ऐसा विचार देखने वाले का रहा। चरिया करते समय लिखा कि भ्रामरी वृत्ति जैसे कि भ्रमर फूलों के निकट पहुंचता है तो फूल प्रसन्न हो जाते हैं, और भ्रमर भी उनमें से अपने योग अल्प ही पराग लेकर के उड़ जाता है। देने वाला देकर के प्रसन्न है, लेने वाला अल्प लेकर के अपने आत्मा में स्थिर रहकर के लौट रहा है। इस तरह की प्रवृत्ति, क्या यह प्रवृत्ति हमारे लिए जीवन को ऊंचा उठाने वाली नहीं होगी? अवश्य होगी। इसलिए भोजन की प्रवृत्ति भी आत्मकल्याण में कारण बन गई। बताइए, हम अपने घर गृहस्थी के कामों में भी स्वपर कल्याण की दृष्टि रख करके और अपने उस कर्म को, उस प्रवृत्ति को अध्यात्म मूलक बना सकते हैं, और वास्तव में वह जो आत्मानुशासन है वही व्रत है, वही निरतिचार व्रत है। ऐसी भावना जिसके भीतर है, ऐसी निर्मलता जिसके भीतर है, वही केवली भगवान के चरणों में बैठ करके और प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से तीर्थंकर का पद प्राप्त करता है। कोई विरला ही जीव है, अपन तो कम से कम इस भावना के माध्यम से तीर्थंकर के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिल जाए, इतनी भावना भाले में। उनके काल में और उनके समोशरण में 12 सभाओं में बैठने का हमें सौभाग्य मिल जाए, इतना ही अगर अपन कर ले में तो भी बहुत है, तो भी कल्याण हो जाए। ये भावनाएं हमारे उस जो सौभाग्य है उसको बढ़ाने में कारण बन सकती हैं। उतना अगर हमें तीर्थंकर पद पाने जैसा सौभाग्य नहीं भी मिले तब भी निरतिचार व्रत का एक उदाहरण आपको बताऊं। आज के समय में तो वो सब बातें आउट ऑफ डेट लगेंगी, पर फिर भी हमें विचार तो करना ही चाहिए। एक बाबा जी भिक्षा के लिए निकले, घर घर के सामने से निकलते हैं और आवाज देते हैं कि भिक्षाम देही, तो जिसे जो सूझता है, जिसके पास जो है, कहां बाहर नहीं भीतर, बाहर तो सबके पास बहुत रहते, भीतर जब तक देवी को भाव न हो गए सो सबरो होत भय बेबी कछु काम को नहीं, वो कचूने हो गए, वो भीतर देवी की भावना हो गए, तो हाथ ही जुड़ लो तो बहुत दे दो। हमारी व्याख्या तो ऐसे ही है भैया, देने लेने वाली आपकी, आप अपनी जानो। तो भिक्षा के लिए निकले हैं, घर घर के सामने से गुजर रहे हैं, थानेदार के घर के सामने से गुजरे तो उनकी जीवन साथी ने दुत्कार करके भगा दिया। मन में बिल्कुल बिना कलुषता के वहां से आगे प्रस्थान कर गए, लेकिन जैसे ही 10 कदम निकले होंगे आगे, उतने में थानेदार आते दिखाई पड़े। तो थानेदार साहब को लगा कि मेरे घर से भी लेके गए होंगे भिक्षा, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ। लेकिन जब घर पहुंचे तो पता लगा कि भिक्षा की जगह पर तो कुछ और दिया गया है। हाँ, जिसके पास जो होगा वो ही तो देगा भाई, जिसके पास में 2 कठोर शब्द हैं उसने भिक्षा में वो ही दे दिए कि ले जाओ, यही हमारे पास कठोर शब्द। तो इनको बड़ा दुख हुआ, थानेदार खून ने अपने नौकर को फौरन भिक्षा लेकर के कि देखो वो चले जा रहे हैं, अब भी थोड़ी दूर तो पहुंचे, अभी तो रस्ते मिले थे हमें, उनको दे के आओ, भिक्षा की गलती हो गई, हमारे घर से आपको भिक्षा नहीं मिली। तो वो नौकर जाता है और कहता कि थानेदार साहब ने, जिनके जीवन साथी ने आपको दुत्कार के भगा दिया था, उन्होंने आपको भिक्षा भेजी है। तो इनने लेने से इनकार कर दिया। जब लेने से इनकार किया तो वो नौकर वापिस आया कि वो तो इनकार कर रहे। तो थानेदार ने सोचा कि हमारी जीवन साधी ने उपद्रव करो है, ऐसी कह दी सो बड़ी मान गए भी, अब हम चले थे सो माफी मांगे ली तो फिर ले दे दे। सो भी हाथ में लेकर के भागे भागे गए और कहा कि भगवान क्षमा करो, आप ग्रहण करो, भिक्षा पाओ। तो उन्होंने कहा भाई मुझे तुमसे कोई नाराजी नहीं है, लेकिन मैं रिश्वत का नहीं खाता। अब बोलो, आया समझ में? मैं वो भिक्षा नहीं लेता। आज अपने यहां पर अगर ऐसा कोई नियम बनाओ तो कहती महाराज दिक्कत होगी, इसमें तो बहुत परेशानी आएगी, आप अगर ऐसा नियम दान इत्यादि में बना दोगे तो फिर कौन मिले ने देवी बारो। लेकिन विचार तो करना पड़ेगा, 1 मिले 2 मिले न मिले 14 24, आप क्या कर सकते। लेकिन शुरुआत तो करना पड़ेगी, किसी ना किसी चूहे खो बिल्ली के गली में घंटी तो बांधना पड़ेगी, नहीं तो ये जो प्रक्रियाएं चल रही हैं यथावत ऐसी ही चलती रहेंगी। लोग अपने आप को श्रेष्ठ मान करके भी और काम तो ऐसे ही करते रहेंगे, और जो श्रेष्ठकारी हैं। तो उन्होंने कहा भाई मुझे तुमसे कोई नाराजी नहीं है, लेकिन मैं रिश्वत का नहीं खाता। अब बोलो, आया समझ में? मैं वो भिक्षा नहीं लेता। आज अपने यहां पर अगर ऐसा कोई नियम बनाओ तो कहती महाराज दिक्कत होगी, इसमें तो बहुत परेशानी आएगी, आप अगर ऐसा नियम दान इत्यादि में बना दोगे तो फिर कौन मिले ने देवी बारो। लेकिन विचार तो करना पड़ेगा, 1 मिले 2 मिले न मिले 14 24, आप क्या कर सकते। लेकिन शुरुआत तो करना पड़ेगी, किसी ना किसी चूहे खो बिल्ली के गली में घंटी तो बांधना पड़ेगी, नहीं तो ये जो प्रक्रियाएं चल रही हैं यथावत ऐसी ही चलती रहेंगी। लोग अपने आप को श्रेष्ठ मान करके भी और काम तो ऐसे ही करते रहेंगे, और जो श्रेष्ठकारी हैं वे भी उनके द्वारा मलिन और दूषित होते रहेंगे। तो जो भी श्रेष्ठकारी हैं उनके लिए हम निर्दोष विधि से जितना हो सके उतना संपन्न करें, व्रत नियम इत्यादि जो हम अंगीकार करते हैं उनको भी हम जितना बन सके उतना निर्दोष रूप से पालन करें और दूसरे के लिए भी पालन करने में निमित्त बने कि आप भी जो है निर्दोष रूप से ही पालन करें। ये निरतिचार शील व्रत की भावना है। भावना भाने में क्या लग रहा भाई, बताइए आप। ऐसी उत्कृष्ट भावना कि हाँ वास्तव में मैं जब भी अपने जीवन में कोई भी व्रत नियम अंगीकार करूं तो कषायें मेरी मंद हो और जो व्रत में पालन करूं वो निर्दोष मेरे बने रहें, तब जाकर के यह भावना जो हमारे भीतर अत्यंत प्रबल होगी, तब इस भावना से होने वाली विशुद्धि से हमारे जीवन में हमारे परिणामों में और ऊंचाई आएगी। ऐसी ये भावना अपने को जितनी बने उतनी भाना चाहिए। और इसके अलावा आपसे विशेष क्या कहूँ, अपन सबके जीवन में व्रत इत्यादि तो बहुत मुश्किल है। आज के समय में साहस ही नहीं होता, कोई साहस भी करे तो उसको इतनी बातें बताई जाती हैं कि वो और क्या कहती उसको कि मोक्ष मार्ग से बिछका दो अपने यहां पर, तो ऐसे कहती तो उसको और उससे विमुख कर देंगे। भाई श्रावक के लिए पांच अनुव्रत तो ग्रहण करना ही चाहिए। आचार्य समंतभद्र स्वामी आठ मूल गुणों में पांच अनुव्रतों को शामिल करते हैं, मद मधु मांस का त्याग करना और पांच अनुव्रतों का पालन करना, ये श्रावक के आठ मूल गुण हैं जो उसके लिए अनिवार्य है श्रावक कहलाने के लिए। प्रतिमा ग्रहण करना वो तो बहुत ऊंची चीज है, लेकिन सामान्य सदगृहस्थ के लिए भी इतना तो करना ही चाहिए। मैं किसी भी जीव को संकल्प पूर्वक मारने का ना विचार करूंगा, ना वचन बोलूंगा, ना शरीर से कोई क्रिया करूंगा, ना स्वयं ना दूसरे से कराऊंगा, ना करने वाले की अनुमोदना करूंगा। ऐसे नौ कोटि विशुद्धि से निर्दोष अहिंसा व्रत का पालन किया जा सकता है। घर गृहस्थी में होने वाली हिंसा से तो गृहस्थ बच नहीं सकता, जो आजीविका के साधन है उनसे होने वाली हिंसा से बच नहीं सकता, अपनी आत्मरक्षा के लिए जो उपाय करना पड़ते हैं उनसे बच नहीं सकता। सो ऐसी विरोधी आरंभी और उद्योगी हिंसा का त्याग नहीं हो पाता। एकमात्र में निष्प्रयोजन निष्प्रयोजन इंटेंशनली किसी जीव को क्षति नहीं पहुंचाऊं, क्या इतना भी भाव नहीं आना चाहिए? मैं ऐसा झूठ ना बोलूं जिससे कि दूसरे के प्राणों का ही विघात हो जावे, इतना ही स्थूल है इसमें। इससे ज्यादा बारीकी में पढ़ना हो तो महाव्रत अंगीकार करो। अनुव्रत में तो इतनी ही बात पर्याप्त है कि मैं बोलने से पहले विचार कर लूंगा कि किसी की क्षति तो नहीं होती, भाई नहीं होती तो ही बोलूंगा। स्वयं की भी क्षति नहीं होनी चाहिए और दूसरे की भी क्षति ना हो प्राणों की। चोरी इत्यादि भी, डाका डालना, किसी का भी धन हड़प लेना, इस तरह का जो भाव है उतना ही त्याग कर पाएगा। बाकी इससे अधिक पर पदार्थ कोई अपना मानना चोरी है, अब इतना ऊंचा विचार तो नहीं आ पाएगा गृहस्थ के लिए, तो इतना ही सामान्य रखेगा। सदा संतोष है ये उसका व्रत है। और परिग्रह की अनंत आकांक्षा हो सकती थी, लेकिन वर्तमान में मेरे पास जितना है उतने में मैं संतुष्ट हूं, लेकिन कोई दोष न लग जावे इसलिए मैं इससे डेढ़ गुना दूना इतनी ही इच्छा करूंगा, इससे अधिक इच्छा नहीं करूंगा, या जितना है उसमें कोई और चीज लाऊंगा इच्छा होने पर तो पहले इसमें से निकाल दूंगा फिर ही स्वीकार करूंगा। मेरी प्रवृत्ति निवृत्ति मूलक होगी, पहले त्याग भी करूंगा जब ग्रहण करूंगा, तो ग्रहण जितना भी करूंगा त्याग पूर्वक ही करूंगा, इतना ही विचार है। ये अनुव्रत ज्यादा कठिन नहीं है भाई, एक बार विचार करना चाहिए, लेकिन लेने वाले के लिए आवश्यक है कि वो कषायों की मंदता के सात व्रतों को लेवे आज के समय में। और देखने में तो ये आता है कि कहो व्रत तो लेने के लिए ले लिए, लेकिन कषायें ज्यों की त्यों, बल्कि और ज्यादा कहो दिखने में आने लगे कि हैं तो व्रती, लेकिन कहने में भी आता है सबके तिक भैया हैं तो व्रती लेकिन कषाय बहुत शोभा नहीं देता। तो जब भी हम साहस करके व्रत लेवें तो अपने अंदर की कषायों को मंद करने का भाव हो, और जितना बने उतना उन व्रतों को निर्दोष पालन करें। दोष काय से लगते भैया व्रतों में? संस्कार से, जो पुराने अनादि काल के संस्कार हैं उनसे, हमारी जो मनोवृत्ति बन जाती है उससे, और हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है उससे दूषित जो वातावरण है, और जो भोगवादी स्वार्थ पूर्ण दृष्टिकोण है उससे ही व्रतों में दोष लगते, और कोई कारण नहीं। जिसको अपने जीवन को निर्दोष बनाना है वो सबसे पहले अपने स्वार्थ को छोड़ेगा, भोगवादी दृष्टि को छोड़ेगा, वातावरण जो दूषित है उस दूषित वातावरण से बचने का प्रयत्न करेगा, और इतना ही नहीं उसके साथ साथ अपने भीतर पड़े हुए संस्कारों को हमेशा परिवर्तित करने का विचार करेगा। खोटे संस्कार हैं तो उनको परिवर्तित करो, पक्का करें हमारी तो आदत ही में है। नहीं भाई, अगर खोटी आदत है तो उस आदत को निकालो। और मनोवृत्ति, कई लोगों की मनोवृत्ति असंतुष्ट रहने की ही होती है, कई लोगों की मनोवृत्ति छिद्रान्वेषण की ही रहती है। ऐसा व्यक्ति जो कि छिद्रान्वेषी है, दूसरों का कर रहा हूं, अरे अपने व्रत पालन करो, दूसरों का कर रहा हूं, दूसरे के घरे का हो रहा हूं, यह जो प्रवृत्ति है वो आपके व्रतों को निर्दोष नहीं रहने देगी, आपके मन को मलिन किए बिना नहीं रहेगी। ऐसी मनोवृत्ति से जो बच सकता है, जो दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करता, जो सिर्फ अपना जीवन व्यवस्थित रूप से जीता है, उसके उस जीवन से और किसी को प्रेरणा मिले तो मिले, दूसरा अपने जीवन को बदल लेवे तो बदल लेवे, वो किसी को भी बदलने के लिए हटाग्रह नहीं करता, प्रेशराइज नहीं करता उसको कि आप तो बदलो ही नहीं, आप बदलना चाहो तो, मैं तो अपना जीवन ऐसे जीता हूं। या अगर व्रत धारण करने के साथ साथ इतनी बातें उसके जीवन में आ जाए, फिर देखिएगा कितना आज के समय में भी, और हम अपने साथ साथ और जीवों के लिए भी और जीवन अच्छा बनाने की प्रेरणा दे सकते हैं। भाई अपन स्वयं भी इन व्रतों को अंगीकार करें और कषायों की मंदता के साथ करें, और अपनी मनोवृत्ति को, अपने संस्कारों को दूषित वातावरण से बच करके निस्वार्थ भाव से और अत्यंत आध्यात्मिक दृष्टि से, भोगवादी दृष्टि नहीं, ऐसे अगर हम अपने व्रतों का पालन करें तो यही भावना हमें तीर्थंकर जैसे पद को पाने में निमित्त बन सकती है। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन।